नमस्कार, आज हम अखंड ज्योति पत्रिका से पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के एक बहुत ही विचारणीय उद्बोधन पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है, कैसे प्राणवान बने साधना। ये सवाल अक्सर उठता है। लोग साधना तो करते हैं पर वो असर, वो गहराई महसूस नहीं कर पाते।
हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही आम अनुभव है कि लोग विधि विधान तो पूरी तरह निभाते हैं पर ऊर्जा या जो अपेक्षित परिणाम है वो कहीं ना कहीं शून्य रहता है। पूज्य गुरुदेव इसी रहस्य को खोलते हैं कि साधना को जीवंत मतलब प्राणवान कैसे बनाया जाए, जिससे वो सिर्फ एक आप कह सकते हैं रस्म अदायगी ना रह जाए। उनका साफ कहना है कि केवल क्रियाकांड कर लेना काफी नहीं है, कुछ और भी चाहिए होता है।
और उन्होंने इसे समझाने के लिए वो जो बीज का उदाहरण दिया है वो बड़ा सटीक है।
हाँ हाँ,
कि जैसे सिर्फ बढ़िया बीज जमीन में डाल देने से बात नहीं बनती।
बिल्कुल,
उसे पानी चाहिए, खाद चाहिए, देखभाल चाहिए।
बिल्कुल,
तभी तो वो अंकुर फूटेगा, पौधा बनेगा, फलेगा फूलेगा। तो फिर ये जो साधना रूपी बीज है इसके लिए खाद पानी क्या है, कहाँ से मिलेगा ये सब?
सही सवाल है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि देखो, मंत्र जपना या पूजा पाठ करना ये तो बीज बोने जैसा पहला कदम है। बस पहला कदम।
अच्छा,
लेकिन अगर इस साधना रूपी पौधे को सही खुराक, सही पोषण न मिले तो ये मुरझा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने कहा कि देखभाल के बिना छोटे पिल्ले दम तोड़ देते हैं।
ओह,
तो साधना को प्राणवान बनाने के लिए उन्होंने दो मुख्य खुराक बताई है।
अच्छा, दो मुख्य खुराकें क्या है वो? पहली कौन सी है?
पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण खुराक है वाणी का तप, जिसे उन्होंने जिह्वा का परिशोधन भी कहा है।
वाणी का तप?
हाँ, ये साधना के पौधे के लिए पानी की तरह जरूरी है, अनिवार्य है। और यहाँ देखिए, जीभ के संयम का मतलब सिर्फ स्वाद पर काबू पाना या नमक मिर्च कम खाना नहीं है, वो तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है उसका।
तो फिर वाणी के तप का असली मतलब क्या हुआ? क्या गहराई है इसमें?
इसका गहरा अर्थ है अपनी वाणी को पूरी तरह से साधना, कंट्रोल करना, हमेशा सच बोलना। लेकिन सच भी कैसा? प्रिय और हितकारी।
हाँ, कड़वा सच नहीं।
कड़वा या चुभने वाला सच भी अगर कहना पड़े तो मीठे शब्दों में सलीके से कहना, किसी का अपमान नहीं करना, अपनी बातों से किसी को चोट न पहुंचाना, छल कपट वाली बातें न करना, व्यर्थ की गपशप से बचना, दूसरों की निंदा से बचना और जहां तक हो सके मौन का अभ्यास करना, अपनी वाणी की ऊर्जा को बचाना।
अरे वाह, मतलब बोलना एक कला है और शायद न बोलना या कम बोलना एक साधना है।
बिल्कुल।
पूज्य गुरुदेव ने इसे पहली सीढ़ी क्यों कहा? वो तुलसीदास जी वाला उदाहरण भी था शायद, कि राम से मिलने से पहले हनुमान जी को साधना पड़ा।
हाँ बिल्कुल सही याद दिलाया आपने, क्योंकि वाणी जो है ना वो हमारा व्यक्तित्व और हमारी अंदरूनी स्थिति का आईना है।
अच्छा।
जब वाणी सज जाती है उसमें सच्चाई होती है, मिठास होती है, संयम होता है, तभी हमारे मंत्रों में शक्ति आती है। जैसे हनुमान जी की कृपा के बिना राम तक पहुंचना मुश्किल था, वैसे ही वाणी को साधे बिना साधना का असली फल मिलना बहुत मुश्किल है। और इसी से जुड़ा हुआ है उन्होंने ईमानदारी की कमाई और सात्विक भोजन के महत्व पर भी जोर दिया, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं वाणी और मन की शुद्धि में मदद करते हैं।
समझ गए, ये तो हुई पहली खुराक, वाणी का तप या संयम। अब दूसरी खुराक क्या है जो साधना को वो शक्ति देती है?
दूसरी और उतनी ही महत्वपूर्ण खुराक है मानसिक ब्रह्मचर्य।
मानसिक ब्रह्मचर्य?
हाँ, इसे पूज्य गुरुदेव ने साधना रूपी दीपक के लिए तेल बताया है, या कह लीजिए गाड़ी के लिए पेट्रोल।
अच्छा।
इसके बिना न साधना का दीपक जल सकता है न गाड़ी आगे बढ़ सकती है।
तो इसका मतलब सिर्फ शारीरिक संयम तो नहीं होगा, क्योंकि मानसिक शब्द जुड़ा है?
बिल्कुल नहीं। देखिए, शारीरिक संयम तो इसका एक पहलू है ही, पर पूज्य गुरुदेव का जोर मुख्य रूप से मन की पवित्रता पर है।
मन की पवित्रता कैसे?
विशेष रूप से पुरुष का नारी के प्रति और नारी का पुरुष के प्रति एक पवित्र दृष्टिकोण रखना, मतलब एक दूसरे को वासना या भोग की दृष्टि से न देखना, बल्कि माँ बहन या बेटी या बेटे के भाव से देखना। क्योंकि कामुक विचार और वासना भरी दृष्टि वो हमारे अंदर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है जिसे ओजस या वर्चस कहते हैं।
हाँ हाँ, सुना है।
जो शरीर और मन की सूक्ष्म जीवन शक्ति है उसे ये चीज नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है।
वो शिवाजी महाराज वाला प्रसंग याद आ गया मुझे।
हाँ बताइए।
जब उन्होंने दुश्मन की एक बहुत सुंदर स्त्री को देखकर कहा था, काश हमारी माता भी इतनी रूपवती होती। उन्होंने उस सौंदर्य में माँ का रूप देखा। ये मानक तो बहुत ऊंचा है।
ऊंचा जरूर है, पर पूज्य गुरुदेव के अनुसार साधना में अगर सच में गहरे उतरना है तो ये अनिवार्य है, जरूरी है। उनका सार यही है कि देखो, मंत्र या उपासना की विधि वो तो बंदूक की गोली जैसी है।
अच्छा,
गोली अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर उसे चलाने के लिए जो बारूद चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो तपस्या से आती है।
और वो तपस्या,
और ये तपस्या मुख्य रूप से वाणी और मन के संयम से ही पैदा होती है, इसी से बनती है।
तो मतलब ये हुआ कि हम घंटों बैठकर माला जपें या पूजा करें, उससे शायद ज्यादा जरूरी ये है कि हम बाकी के 23 घंटे अपनी जबान और अपने विचारों पर कितना ध्यान रखते।
एकदम सही पकड़ा आपने।
असली कसौटी तो वो रोजमर्रा का जीवन है।
बिल्कुल, जब व्यक्ति की वाणी शुद्ध है, सच्ची है, मीठी है, संयमित है, जब उसके विचार पवित्र हैं, वासना रहित हैं, तभी उसकी उपासना या मंत्र जप में असली शक्ति पैदा होती है। तभी साधना प्राणवान बनती है और उससे वो आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं जिन्हें लोग कभी कभी चमत्कार या सिद्धियां भी कह देते हैं। ये बाहरी कर्मकांड के सागर की सतह पर बस तैरते रहने जैसा नहीं है, ये तो अंदर गोता लगाकर मोती निकालने जैसा है।
तो अगर हम संक्षेप में कहें तो साधना की सफलता सिर्फ बाहरी क्रियाओं पर नहीं बल्कि उनसे भी कहीं ज्यादा अंदर की शुद्धि पर निर्भर करती है, यानी वाणी और विचारों का संयम।
हाँ,
सिर्फ विधि पूरी कर लेना काफी नहीं है।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव हमें एक बहुत गहरी बात सोचने पर मजबूर करते हैं कि सच्ची तपस्या का मतलब सिर्फ जंगल में जाकर धुनी रमाना या उपवास करके शरीर को कष्ट देना ही नहीं है।
हाँ,
असली और शायद ज्यादा कठिन तपस्या तो रोजमर्रा के जीवन में है। हर पल हर क्षण अपनी वाणी और अपने विचारों को पवित्र और संयमित रखने का वो जो निरंतर प्रयास है, वही असल तप है।
वाकई, ये दृष्टिकोण तो साधना को एक बिल्कुल ही नया और शायद ज्यादा व्यावहारिक आयाम देता है।
हाँ, और यहीं से हमारे लिए हर साधक के लिए एक विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है।
क्या?
कि वाणी या मन के इस तप का कौन सा एक छोटा सा बिल्कुल प्रैक्टिकल अंश हम आज से ही अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले सकते हैं। शायद किसी की बुराई न करना, या कोशिश करना कि आज गुस्सा ना करें, या हर हाल में मीठा बोलने का प्रयास करें। कुछ भी छोटा सा, पर शुरू करें। सोचने वाली बात है ये।
बिल्कुल सोचने वाली बात है। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद।